हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांश इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, अंबिका को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों के सामने अंबिका का चेहरा घूम रहा था और हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी माँ ने वेदांश की हालत देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इस समय वेदांश को किसी की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ एक ही बात चाहिए थी, अंबिका की सलामती। अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेदांश को ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। उसकी हर सांस भारी हो गई थी। उसने कई बार अपने हाथों की तरफ देखा, जो अब भी अंबिका के खून से सने हुए थे। वेदांश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बाहर आने नहीं देना चाहता था। उसे हमेशा एक मजबूत इंसान की तरह रहना सिखाया गया था, लेकिन आज उसकी पूरी दुनिया बिखरती नजर आ रही थी। आज पहली बार वो किसी के लिए इतना घबराया हुआ था। तभी डॉक्टर केबिन से बाहर आए और वेदांश एकदम से उनके पास गया। उसकी आंखों में सवाल थे और उसकी माँ भी डॉक्टर के पास आईं। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। दिल के एकदम नज़दीक गोली लगी है और बहुत खून बह चुका है। गोली का जख्म भी गहरा है। ये सुनकर वेदांश जैसे सब में से अपनी जगह पर जम गया। वो एक भी कदम और आगे नहीं बढ़ा पाया। उसकी माँ ने तुरंत भगवान का नाम लेते हुए हाथ जोड़े और अपने मन में प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, रक्षा करना मेरी बहू की। अब तक मैं उससे मिली भी नहीं हूँ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वेदांश की माँ की आंखों में आंसू एकदम साफ नजर आ रहे थे, जबकि वेदांश डॉक्टर की बातों को सुनकर एकदम से वहीं पर उसके पीछे रखी हुई बेंच पर बैठ गया। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया था। उसने अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया और खुद से बुदबुदाने लगा, क्या हो गया ये सब अचानक से? कैसे मैं अंबिका के बारे में नहीं सोचा? मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? एक पल के लिए भी मुझे उसका ध्यान नहीं आया, और उसे क्या जरूरत थी इस तरह कमरे से बाहर आने की? नहीं, गलती मेरी ही है। मैं दरवाज़ा बंद करना क्यों भूल गया? क्यों? क्योंकि अगर वो कमरे के अंदर होती तो हमेशा की तरह बिल्कुल सेफ होती। वो इन सारी चीज़ों का गुनाह खुद को ही मान रहा था, और उसकी ये बातें साइड में खड़ी हुई उसकी माँ ने भी सुन ली। भले ही वेदांश ने बहुत धीमी आवाज़ में सिर्फ अपने आप से ये सब कहा था, लेकिन फिर भी उसकी माँ का पूरा ध्यान उसकी तरफ था, इसलिए उन्हें ये सब सुनाई दे गया। उसकी माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वेदांश, देखो, जो हो गया अब उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अंबिका बहुत मजबूत है, वो इस हालात से बाहर आ जाएगी, लेकिन तुम उसे और तकलीफ मत देना। वेदांश ने सिर उठाया और अपनी माँ की तरफ बहुत ही ठंडी नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं आपसे पूछने नहीं आऊँगा, और जो अंबिका के साथ हुआ वो बस एक हादसा है। फिर वेदांश ने बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखा। कुछ भी हो जाए डॉक्टर, उसे बचा लीजिए, चाहे जो भी करना पड़े, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, हम ऑलरेडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर वेदांश ठाकुर, आप बस भगवान से प्रार्थना करें, अभी सब कुछ भगवान के हाथ में है, हम कुछ नहीं कह सकते। एक्सक्यूज मी, इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। लेकिन वेदांश का मन अशांत था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी के दिन भी ऐसा हादसा हो सकता था। उसके दुश्मन ने उसके घर में घुसकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वेदांश को तो मार नहीं पाया और अंबिका उसका निशाना बन गई। वेदांश कभी ये सब नहीं भूल पाएगा, और उसकी आंखों के सामने बार बार अंबिका का चेहरा घूम रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सब उसकी वजह से ही हुआ। अब उसके सामने अंबिका जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, और वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। ये सब सोचते हुए वेदांश ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, और एक गहरी सांस लेने के बाद वो वहां से उठकर धीरे धीरे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलने लगा। हर कदम भारी था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वेदांश की माँ अपने बेटे को इस तरह पहली बार इतना घबराया हुआ और बेचैन देख रही थी। उसका चेहरा भी एक अलग ही कहानी कह रहा था। जिसे देखकर वेदांश की माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो शायद अपने बेटे को बदलते हुए देखकर खुश थी। जब काफी ज्यादा समय हो गया और अंबिका की कोई भी खबर नहीं मिली, वेदांश बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था और उसकी माँ वहाँ पर बैठे बैठे ही सो गई थी। तो वेदांश ने अपनी माँ को जगाकर घर वापस जाने के लिए कहा, आप वापस चली जाइए, बेकार में ही यहाँ पर बैठी हुई हैं, थक जाएंगी। वेदांश की माँ को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई और उन्होंने कहा, और तू नहीं थकेगा, यहाँ पर बैठा हुआ तू भी तो है कल से, इतना क्यों परेशान है उसके लिए, वो आखिर तेरी क्या है, तू तो खुद उसे इससे ज्यादा तकलीफ दे रहा था। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर वेदांश सोचने पर मजबूर हो गया, लेकिन उसने जवाब में बस इतना कहा, आपकी मर्जी, जाना हो जाइए, बैठे रहना है तो बैठे रहिए, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलने वाला। इतना बोलकर वेदांश वहाँ से उठकर दूसरी साइड पर चला गया और कुछ देर के बाद उसकी माँ भी एक बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से वापस घर के लिए निकल गई। वेदांश पूरी रात वहाँ पर रुका रहा, उसके साथ बॉडीगार्ड और उसका असिस्टेंट भी था और भी बाकी सारे वेदांश के लिए काम करने वाले लोग, लेकिन वो सब थोड़ी दूर पर खड़े थे और वेदांश अकेला ही कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काट रहा था, क्योंकि उसे ना तो बैठकर सुकून मिल रहा था और ना ही खड़े रहने में। वो बस जल्द से जल्द अंबिका को होश में आते देखना चाहता था। वेदांश की माँ अपने बेटे को इस तरह पहली बार इतना घबराया हुआ और बेचैन देख रही थी। उसका चेहरा भी एक अलग ही कहानी कह रहा था, जिसे देखकर वेदांश की माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो शायद अपने बेटे को बदलते हुए देखकर खुश थी। जब काफी ज्यादा समय हो गया और अंबिका की कोई भी खबर नहीं मिली, वेदांश बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था और उसकी माँ वहाँ पर बैठे बैठे ही सो गई थी। तो वेदांश ने अपनी माँ को जगाकर घर वापस जाने के लिए कहा, आप वापस चली जाइए, बेकार में ही यहाँ पर बैठी हुई हैं, थक जाएंगी। वेदांश की माँ को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई और उन्होंने कहा, और तू नहीं थकेगा, यहाँ पर बैठा हुआ तू भी तो है कल से, इतना क्यों परेशान है उसके लिए, वो आखिर तेरी क्या है, तू तो खुद उसे इससे ज्यादा तकलीफ दे रहा था। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर वेदांश सोचने पर मजबूर हो गया, लेकिन उसने जवाब में बस इतना कहा, आपकी मर्जी, जाना हो जाइए, बैठे रहना है तो बैठे रहिए, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलने वाला। इतना बोलकर वेदांश वहाँ से उठकर दूसरी साइड पर चला गया और कुछ देर के बाद उसकी माँ भी एक बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से वापस घर के लिए निकल गई। वेदांश पूरी रात वहाँ पर रुका रहा, उसके साथ बॉडीगार्ड और उसका असिस्टेंट भी था और भी बाकी सारे वेदांश के लिए काम करने वाले लोग, लेकिन वो सब थोड़ी दूर पर खड़े थे और वेदांश अकेला ही कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काट रहा था, क्योंकि उसे ना तो बैठकर सुकून मिल रहा था और ना ही खड़े रहने में। वो बस जल्द से जल्द अंबिका को होश में आते देखना चाहता था। टू बी कंटिन्यूड। सॉरी फॉर दिस शॉर्ट चैप्टर। हमने सोचा था आप लोगों को आज दो बड़े चैप्टर देंगे, इसलिए हमने ज्यादा लिख भी लिया था, लेकिन ज्यादा लिखने का साइड इफेक्ट ये होता है कि जब लिखने में ही ज्यादा देर हो जाती है और 12 या 1 बज जाता है, तब फिर एडिट नहीं हो पाता, और यही हुआ है। अभी पहले ही 2-3 बज रहे हैं। अगर हमने ये भी अपलोड नहीं किया तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही है। तो अभी इतना अपलोड हो गया है तो प्लीज इतना पढ़ लो, बाकी हम कल कवर कर लेंगे, पक्का 2 भाग देंगे। लव यू ऑल।